नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्वागत आपका।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
संजीव, कुछ खेलों से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर युवा खिलाड़ियों ने बहुत ही प्रभावित किया है। जैसे हम अगर स्क्वाश की आज बात करते हैं, अनाहत सिंह ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बैडमिंटन में तानिया हेमंत ने खिताबी जीत हासिल की है।
बिल्कुल, देखिए ये अनाहत सिंह काफी कम उम्र से, 12-13 साल की उम्र से ही सुर्खियों में रहती है और अच्छा कर रही है। अभी सीनियर लेवल पे भी उन्होंने बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा किया है, तो ये जूनियर जब अच्छा करते हैं तो बहुत खुशी की बात होती है और ये बताता है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है बहुत ही अच्छी है।
हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। अनाहत सिंह ने NSW बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। शिलोंग लाजोंग FC 134वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। CAFA नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए भारत के 35 संभावित खिलाड़ियों का ऐलान। सुनील छेत्री को टीम में जगह नहीं मिली और तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। तो शुरुआत करते हैं आज स्क्वाश से। ऑस्ट्रेलिया में भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की नूर फागी को कड़े मुकाबले में हराकर NSW बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 17 वर्ष की अनाहत ने सेमीफाइनल में 3-2 से जीत दर्ज की। मुकाबला कांटे का रहा लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने लाजवाब प्रदर्शन किया। PSA कूपर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय अनाहत का सामना अब मिस्र की ही हबीबा रानी से होगा, जिन्होंने 5वीं वरीयता प्राप्त भारत की आकांक्षा सालुके को 3-1 से हराया। अनाहत को मैच के दौरान चोट भी लगी लेकिन वो खेलती रही। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की हैली वार्ड को 3-0 से हराया था। क्या कमाल का जज्बा उन्होंने आज दिखाया है। एक तरफ उनको चोट लगी हुई थी और स्क्वाश जैसा इतना फास्ट गेम, उसमें चोट के बावजूद एक अपने से बेहतर उम्र की खिलाड़ी के साथ साथ हम कह सकते हैं अनुभवी खिलाड़ी को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराना बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है।
देखिए, काफी समय से अनाहत, मेरा ख्याल है जैसा मैं बता रहा था, 12-13 साल की उम्र से ही वो काफी स्क्वाश में अलग अलग टूर्नामेंट्स में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रही थी। और याद होगा भारत की दो बड़ी खिलाड़ी थी पिछले कुछ वर्षों में, एक दो डिकेट की बात करें तो दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा। अब उसके बाद लग रहा था कि उसके बाद कौन। अनाहत सिंह ने 12-13 साल में ही संकेत दे दिया था कि वो इस पोजीशन पे आ सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जूनियर प्लेयर जो है जूनियर लेवल पे तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सीनियर लेवल पे थोड़ा उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता भारतीय प्लेयर्स का। लेकिन इन्होंने कम उम्र में भी, अभी 16-17 साल की ही है, सीनियर लेवल पर भी जाके और लगातार इंटरनेशनल सर्किट में खेल रही हैं और ये जो जज्बा है जो आपने बताया, चोटिल होने के बाद भी उन्होंने फाइट की। और इजिप्ट की जो प्लेयर्स होती है बहुत ही अच्छी होती है, चाहे मेल और फीमेल हो, तो वहां पर उन्होंने चुनौती देते हुए और अगले राउंड में जगह बनाई, ये बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि उनके अंदर जज्बा कितना है और उम्र कम है उनकी और आगे आने वाले समय में इनसे और अच्छे नतीजे की हम उम्मीद कर सकते हैं।
बात अब फुटबॉल की। शिलोंग लाजोंग FC 134वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शिलोंग में आज पहले क्वार्टर फाइनल मैच में उसने इंडियन नेवी FT को 2-1 से हराया। सुनते ही रिपोर्ट।
ग्रुप मुकाबलों में अविजित रही इंडियन नेवी फुटबॉल टीम अपनी जीत का सिलसिला अंतिम 8 के मैच में कायम नहीं रख सकी और बेहतर खेल दिखाने के बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से प्रभावित करने वाली इस टीम ने शिलोंग लाजोंग के घरेलू समर्थन के बावजूद बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन किया। अपने सटीक आक्रमण की बदौलत इंडियन नेवी ने विजय मरांडी के लाजवाब गोल की बदौलत बढ़त बना ली। हाफ टाइम तक उसकी ये बढ़त कायम रही, हालांकि हाफ टाइम के बाद मेजबान टीम ने आक्रामक अंदाज में वापसी की। डेमेट ने गोल कर शिलोंग लाजोंग को मुकाबले में बराबरी दिलाई। इसके बाद उसके समर्थकों का उत्साह दोगुना हो गया। स्टेडियम में हर तरफ से समर्थन के लिए उठते स्वर के बीच इवर ब्रिगटन साना को गोल पोस्ट के पास खतरनाक तरीके से रोकने की गलती इंडियन नेवी के डिफेंस ने की। इस पर रेफरी ने पेनल्टी दिया। ये मौका मेजबान टीम को बढ़त दिलाने के लिए काफी था। साना ने ही इस पेनल्टी पर गोल किया जिससे शिलोंग की बढ़त 2-1 ही हो गई। उसने इस बढ़त को अंतिम सीटी बजने तक कायम रखा और डूरंड कप के 134वें संस्करण के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
इंडियन नेवी ने कमाल का प्रदर्शन किया, हालांकि पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन जो मुकाबला रहा, क्या कमाल का फुटबॉल खेला है इंडियन नेवी ने। अगर इस मुकाबले की फेवरेट टीम की बात करें तो निश्चित रूप से शिलोंग की टीम फेवरेट थी।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इंडियन नेवी ग्रुप एफ में टीम थी और उन्होंने अपने ग्रुप में 7 अंक हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया। और उनके ग्रुप में देखें तो रियल कश्मीर की टीम थी, नेरोका की टीम थी, ट्राउ की टीम थी और ये सारी टीमें बहुत प्रोफेशनल है। हालांकि इंडियन नेवी की टीम भी यहाँ खेल रही है तो नहीं कह सकते प्रोफेशनल नहीं है, बट अगर कंपेयर करें तो उनकी टीम बेशक अच्छी नजर आ रही थी। और इंडियन नेवी ने लगातार अच्छा किया है इस टूर्नामेंट में। शिलोंग लेजेंड तो जरूर फेवरेट टीम थी, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर उधर हैं। और एक साथ इसके साथ में एक और जानकारी दे दूं कि दूसरी टीम भी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम भी पहुंच गई है। 3-0 से उसने बोडोलैंड को हराया है और जैसा कहा गया रिपोर्ट में कि शिलोंग की पहली टीम है तो दूसरी नॉर्थ ईस्ट की टीम आज ही मुकाबला था पहुंच गई है और इन दोनों टीमों का सामना अब सेमीफाइनल में होगा।
और अगर आप क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों की बात कर रहे हैं, तो तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच कल जमशेदपुर एफसी और डायमंड हार्बर एफसी और चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इमामी ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच खेला जाएगा। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला जो चौथा क्वार्टर फाइनल होना है ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान के बीच। बंगाल की ये दोनों माहिर टीमें, हालांकि हाल के दिनों में मोहन बागान का दबदबा रहा है, लेकिन इस मुकाबले को आप कैसे आंकते हैं?
बिल्कुल, अगर आप इस टूर्नामेंट का सिर्फ उनका दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो ए और बी ग्रुप में दोनों टीमें थी। ईस्ट बंगाल ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया और 12 गोल किए ग्रुप स्टेज में और उसके खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ है। और ठीक इसी तरह का आंकड़ा मोहन बागान का भी है, उन्होंने भी 3 मैच जीते, 12 गोल दागे, हालांकि उनके अगेंस्ट में 2 गोल हुए और दोनों टीमें ने दबदबा बनाते हुए इस नॉकआउट में जगह बनाई थी। और जो ट्रेडिशनली हम देखें तो 3 बंगाल की टॉप टीमें थी, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, इनका कहीं भी मुकाबला हो देश भर में चाहे किसी भी टूर्नामेंट में तो उनके जो फैंस का है, फैन बेस बहुत बड़ा है और लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है नॉकआउट स्टेज का। मुझे लग रहा है कि जो 4 मुकाबले अभी 2 हो चुके, 2 और होने वाले, उनमें सबसे बड़ा मुकाबला यही है।
और फुटबॉल की एक और खबर है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसी महीने होने वाले CAFA नेशंस का फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए भारत के 35 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में सुनील छेत्री को शामिल नहीं किया गया है, छेत्री ने हाल में संन्यास से वापसी की थी। तो क्या वजह हो सकती है सुनील छेत्री को नहीं टीम में जगह देने की, क्या उन्होंने खुद ही इस टूर्नामेंट से अपने आप को बाहर रखा होगा?
देखिए, नए कोच आए हैं जो खालिद जमील जो है, वो काफी साल बाद, 12-13 साल के बाद कोई इंडियन कोच भारतीय टीम के साथ जुड़ा है। और अभी तक जो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि जो AIFF ने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 35 नाम उसमें दर्ज किए हैं तो उसकी वजह क्या है, अभी हम ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको ड्रॉप किया गया होगा। हो सकता है सुनील छेत्री खुद ही उस स्थिति में नहीं होंगे कि वो खेले, तो उन्होंने जिस तरह से उनको संन्यास के बाद कहा गया था कि आप कुछ दिनों के लिए आए, हो सकता है कोई बातचीत हुई होगी कि अब मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूं, मैं हर एक मैच नहीं खेल सकता उम्र को देखते हुए और जो फिटनेस लेवल, हालांकि बेस्ट अभी भी सुनील छेत्री हैं। तो ये अब कुछ दिनों में बात पता चलेगा, इस बात का वो पता चलेगा कि वो क्यों आउट है, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ड्रॉप किया गया होगा।
और हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो भारत को ग्रुप बी में ताजिकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को मेजबान ताजिकिस्तान के खिलाफ करेगा, इसके बाद 1 सितंबर को ईरान और 4 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा। तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ और फाइनल 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन के कोर्ट पर चलते हैं। भारत की तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आज महिला सिंगल्स के फाइनल में तानिया ने जापान की कानाए सकाई को 15-10, 15-8 से हराया। 21 वर्षीय तानिया का यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खिताब है। हालांकि तानिया का नाम अभी अगर इंटरनेशनल बैडमिंटन सर्किट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन एक संकेत तो है कि भारत की जो मजबूत बैडमिंटन की परंपरा है उसकी तरफ ये भी मजबूती से कदम बढ़ा रही है।
बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तानिया हेमंत, अभी बहुत से लोगों को ये देखना होगा, पता नहीं होगा इसके पहले इनका नाम कि इंटरनेशनल लेवल पे, ये कर्नाटक की हैं, मैसूर की हैं, और कर्नाटक में भी एक अच्छा माहौल है बैडमिंटन का, और 21 साल की हैं और ये बड़ा इनके करियर का है। अभी वर्ल्ड में टॉप 50 रैंकिंग में है, तो जाहिर सी बात है कि वो हाल फिलहाल अच्छा करती रही है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक पहचान बनाई है। उम्मीद करें कि आगे भी इस तरह की जो टूर्नामेंट में अच्छा करती रहे।
जी, विश्व चैंपियन ग्रैंडमास्टर डी गुकेश सेंट लुई रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे। अमेरिका के लेवोन एरोनियन ने खिताब जीता। और शतरंज से एक और खबर है, चेन्नई में भारतीय ग्रैंडमास्टर एएम प्रणेश ने अंतिम दौर में असफलता के बावजूद कल क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में चैलेंजर्स वर्ग का खिताब जीत लिया। प्रणेश अंतिम दौर में जीबी हर्षवर्धन से हार गए, लेकिन 6.5 अंक लेकर खिताब जीतने में सफल रहे। बात क्रिकेट की, आगामी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन मंगलवार को किया जाएगा। टीम में रिंकू सिंह के चयन और शुभमन गिल की भूमिका को लेकर दिलचस्प स्थिति बन गई। एक रिपोर्ट।
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली बीसीसीआई की चयन समिति जब खिलाड़ियों को चुनने बैठेगी तो उसके सामने कई पेचीदा सवाल खड़े होंगे। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की टीम में भूमिका और जगह को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं एक समय भारत के फिनिशर के रूप में देखे जा रहे रिंकू सिंह की जगह भी सवालों के घेरे में है। रिंकू ने 2023 आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक मैच में आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए संभावित फिनिशर माना जाने लगा, लेकिन 2020 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली और वे सिर्फ स्टैंड बाय में रहे। 2024 और 2025 के आईपीएल सीजन में रिंकू को खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदों का सामना किया और 2025 में 134 गेंदों का, इससे उनका रोल सीमित होता गया। ऐसे में अगर एशिया कप को ही ध्यान में रखें तो रिंकू सिंह की जगह पक्की नहीं दिख रही है। टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की जगह तय मानी जा रही है। अगर रिंकू को बाहर किया जाता है तो शिवम दुबे और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। जितेश विकेट कीपिंग कर सकते हैं और शिवम गेंदबाजी भी कर सकते हैं। टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल के चयन पर भी संशय की स्थिति है। फिलहाल टीम का चयन बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। हिमांशु कांडपाल, स्पोर्ट्स कैन।
रिंकू सिंह, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, इन तीनों को टीम में कैसे शामिल किया जाए, सचमुच बड़ी चुनौती होगी।
देखिए, गिल का तो मुझे नहीं लगता, जो जिस टॉप ऑर्डर में खेलते हैं उनको आप नीचे खिला नहीं सकते हैं, और वहां पर जो जगह है अभी मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि इसके पहले की जो टीम थी उसमें जो प्लेयर्स को आप देखें, सूर्य कुमार यादव है 4 नंबर पर, तो मुझे नहीं लगता टॉप 2, 3, 4 में इनकी जगह बनती है। तो अभी जो टेस्ट के कप्तान है उनको T20 में शामिल होना मुझे लग रहा है मुश्किल है अभी।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन का आज निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में सिडनी में अंतिम सांस ली। बॉब सिम्पसन ने 1957 से लेकर 1978 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। ISAI के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 11 से ज्यादा एशियाई देश भाग लेंगे।
ये शॉर्ट ट्रैक एशियन चैंपियनशिप है, इसमें 11 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो टोटल दस्ता है, कंटिंजेंट साइज है, वो लगभग 260 का कंटिंजेंट साइज है जो यहाँ पे आएगा। इसमें जापान से लेकर के, चाइना से लेकर के हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइनीज टाइपे, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के जो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हम पहली बार भारत में ये शॉर्ट ट्रैक की एक एशियन ट्रॉफी का होस्टिंग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हम भारत में भतिथि देवो भव जो हमारे संस्कार है उसको मद्देनजर रखते हुए ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जितने भी विदेशी खिलाड़ी आएंगे उनका ध्यान भी रखेंगे और ये बहुत इलेक्ट्रिफाइंग स्पोर्ट होने वाला है।
और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो संजीव जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।
नमस्कार
दोस्तों, मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।